तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा सोचिए, उन्होंने ऑफर की थी कि आज हम तुम्हें दिखाते हैं जरा अपना रंग ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, लिखे सूरत अल अंबिया की आयत 57, तल्लाही लाकीदन असनामकुम वातन तुवल्लू मुदबिरीन। अल्लाह की कसम तुम्हारे जाने की देर है, मैं तुम्हारे खुदाओं के बारे में जरूर कोई मंसूबा बनाऊंगा। आपने उनको टालने के लिए सोचा और फिर क्या हुआ, फनजर नजरतन फिर नुजूम, फिर आपने एक निगाह सितारों पर डाली। फकाल इन्नी सकीम, और कहा मैं तो मरीज हूं, आई एम सिक। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, बस वो आपसे मुंह फेर कर चले गए। अब आपको वो रब समझ आ रहा है। तफसीर में आप सारी आयतें मुख्तलिफ आयतों के जुर्मट में पढ़ते हैं ना, आपको इस कोर्स में सारी आयतों का रब्त मिलेगा। खुलासा क्या हुआ, इब्राहिम ने बरमला तनकीद शुरू कर दी, कौम को खतरा हो गया, थ्रेड फील किया कि ये क्या हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। और बिल्कुल नबी सल्लम की नबूवत का आगाज देखिए तो आपके बारे में भी कुरैश मक्का परेशान थे, कभी आपके चचा के पास जाते अपने भतीजे को समझाओ पता नहीं इसको क्या हो गया है, कभी हकीम बुलाकर कहते इसका इलाज करो, कभी काहिनों को बुलाकर कहते शायद नाउज बिल्ला इसके ऊपर कोई सितारों का असर है। ये आज भी होगा। लिखिए, जिसको सच्ची तौहीद समझ आएगी एक दफ़ा उसके इर्द गिर्द वाले उसके खिलाफ होंगे। और जुमला 10 दफ़ा तो कम से कम मैंने ज़िंदगी में बोला है कि जब आप सच्चे दीन के पर आएंगे ना, दो काम ज़रूर होंगे, आपके दोस्त आपके दुश्मन बनने लगेंगे, बेजार कम अज कम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक व्हाट्सएप और ग्रुप बनाकर एक पार्टी कर भी लेंगे, आपको बाद में खबर मिलेगी किसी स्नैप में कि अच्छा मेरे बगैर दावत हो गई है, अच्छा मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि आप उनके बुतों के खिलाफ बोलती हैं। इब्राहिम के साथ भी ये मामला था। और दूसरी बात यह कि जिनको आप कल तक बुराज कहते थे, जो दुश्मन थे, वो दोस्त बनने लगते हैं, वो जिनको आप कभी कभी मौलवी दर्स वालियाँ और कुरान वालियाँ कहते थे, फिर वो अच्छे लगने लगते हैं, दी बेस्ट कंपनी आपको ज़िंदगी की फिर वो लगने लगती, ये डेफिनेट होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने असल में उनकी उस दावत को रिजेक्ट कर दी। उन्हें कभी चलो चलो एक मेले पे जा रहे हैं, मौज करेंगे, जश्न मनाएंगे, तो इब्राहिम ने उनको जरा जिसको आप कहते हैं ना थोड़ा सा वो डाइसी सा स्टाइल है, यानी फील ये कराया, फनाजरा नजरातुन फिल नजूम, ये क्यों था पता है आपको, क्योंकि वो कौम सितारों से किस्मत मालूम करती थी। तो इब्राहिम ने उनको ट्रिक करना चाहा, नहीं मैं ज़रा हिसाब लगा रहा हूँ, यानी उनका अकीदा नहीं था, ये तौरिया का स्टाइल है, लेकिन साथ ही कहते फ़काल इन्नी सकीम। अब ये वो एक झूठ है जिस पे इब्राहिम क़यामत के दिन परेशान होंगे, तीन में से एक झूठ ये है। हालांकि बीमार ही थे, उलमा कहते बीमार थे, रूहानी तौर पर बंदा बीमार हो जाता है मुशरिकों में रह के, और जिसके अंदर सच्ची तौहीद होती है वो तो बर्दाश्त करता है। वही बात है, जिस चीज़ पर लोग हंस रहे होते हैं आपको उस पर रोना आ रहा होता है, जिस चीज़ पे लोग इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं वहाँ आप रो रहे होते हैं, लोगों को मज़ा आ रहा होता है आपको सर में दर्द लगता है, जाकर देख लीजिए। वो जो आप कभी धोखा देने के लिए खुद को जाते हैं ना, मैं गिफ्ट देने जा रही हूँ और बस मैं मुंह दिखा के आ जाऊँगी, नहीं नहीं मैं वहाँ बैठूंगी बिल्कुल नहीं, बस मैं उनको बता दूँ कि मैं नहीं आ रही, अच्छा मैं गिफ्ट दे के आती हूँ, फिर वो कहेगी शायद गिफ्ट देने के मारे नहीं आई ना, नहीं वो मेरे भी आई थी ना तुम्हें, तो वहाँ जाएंगे ना, फिर आप ये लिख लीजिए कि उन्होंने आपको खाने पर रोकना है, फिर आप कहेंगे मैं चलो खाना ही खाना है, मैं तो खुश तो नहीं थी, मैं तो बैठी थी बड़ी दुखी। वो कहेंगे देखा आपको हमने जीत लिया, देखा बैठ गया, तो आपकी स्नैप भेजेंगे सारे दोस्तों में कि ये भी आई थी, ये भी बैठे थे। जैसे नबी सल्लम से मस्जिद ज़रार को उन्होंने गुशन कराना था ना, कि इसको एक दफ़ा आके नमाज पढ़ जाए ताकि हम लोगों को बता दें कि ये मस्जिद ही है, तो हम अपनी मस्जिद ज़रार को ज़रा ओके करा ले, लोग करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि आबदुलतुदीन फयुदीन, ये तो चाहते हैं तुम उंगली पकड़ाओ हम हाथ तुम्हारा खुद ही पकड़ लेंगे, तुम जरा से ढीले तो हो जाओ ये हम बाकी ढीलापन खुद ही कर लेंगे। बड़ा तिलकन रास्ता है, ये स्लिपरी वे है, फिसलने वाला रास्ता, ये आसान नहीं है। अगेंस्ट द टाइड्स, या वो कहते हैं हवाओं के रुख से मुखालिफ चलना, ये है इब्राहिम का लजी वफा। कौन सी तस्बीह नमाज पढ़ते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुनी अभी तक मेरे से, जवानी की उम्र तक पहुंच गए हम, आगे जाने अभी इंशाल्लाह। कौन सा वजीफा करते थे, कौन सी 500 दाने की उनकी तस्बीह थी, कुछ भी तो नहीं है। और अल्लाह करे अल्लज़ी वफ़ा व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, तो ये वफाएं निभानी पड़ती हैं। बदतरीन बेवफाई बंदे की रब के साथ बेवफाई है। जुमला लिखिए, चूंकि मौजू शिर्क है ना, मुशरिक दुनिया का सबसे बड़ा बेवफा शख्स है, जिसको खालिक मालिक रब अर्रज़ाक और वो आलमोस्ट 125 नाम किए हमने पिछले चंद एक माह में, ये सबसे बेवफा होता है। फिर वो माँ बाप का भी बेवफा, वो बीवी का बेवफा, वो मुंह इधर उधर मारेगा, वो माँ बाप की जगह दूसरों के माँ बाप को लाइक करेगा, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों की तरफ जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई मैं नहीं जाता तुम्हारी जगह। अब आप भी ज़रा अपने ऊपर लेकर सोचिए, हम क्या करते हैं ऐसे वक्तों में, मजबूरियों के नाम पे पहुंच जाते हैं वहाँ, फिर कपड़े भी तो पहनने, फिर कब पहने, फिर नहीं जाया करूँगी तो इन कपड़ों का क्या बनेगा, फिर ना गई तो वो ज़रदा पुलाव बिरयानी वो तो रोज़ आपको घर में ही मिल जाया करेगा। लेकिन इब्राहिम नहीं गए। लिखिए अमल का नुक्ता, टेक अ फर्म स्टैंड, बी फर्म, बी पोलाइट बट फर्म, सॉफ्ट रहिए, जुबान पे नरमी, बात कम लेकिन जाना नहीं है। जब आप गलत चीज को आप खुद ही अपना लेंगे तो रोकेंगे का? फिर इसके बाद अगला पता है दुलौतुदखिनु फयुदखिनु उनका स्टेप क्या आता है, फिर आप कहते चुप बोलो ही नहीं, बुरे बने, क्योंकि बोले तो अगले ने कहना वो लास्ट वीकेंड आप किधर थी, मैंने खुद देखी आपकी स्नैप, नहीं नहीं वो मैं क्या। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, नए नए आते हैं ना तो फिर ससुराल वालों पे रोप डालते हैं, उनकी शादियों का बायकॉट, उनकी मेहंदियों का बायकॉट, उनकी ये सारी रस्मों का बायकॉट, फिर महकमे में जाने लगते हैं, फिर कभी दोस्तों में चले जाते हैं, कभी बच्चों के नाम पे। तो वो लोगों ने नजरें लगाई, वो सबसे पहले ये पूछा, अपने फुलां आई थी, अच्छा शुक्र सीना ठंडा हो गया, अब तंज करूंगी इसको जब ये मेरे पास नहीं आएगी। ये बातें ही हमें फिर बदलती हैं, ये भी बता दूं, मुझे इतना पता है हनीफ हो जाइए, अब मेरी आपकी इज्जत अल्लाह का बनने में, कुरान से जब ताल्लुक जुड़ जाता है उसके बाद दुनिया को खुश करने के लिए जितना अल्लाह को नाराज करेंगे दुनिया आपका उतना मजाक उड़ाएगी, और आप बड़े खुश होंगे, नहीं मैं अपनी दोस्तों को भी तो रख रही हूँ ना, फिर मेरा मियाँ भी, ससुराल भी, फिर मेरे घर में क्या करूँ। बस वो कीजिए जो इब्राहिम ने कहा, मैं नहीं जाता तुम जाओ, नहीं गए मेले में, आप मेलों में जाएं, ठेलों में जाएं, कॉन्सर्ट्स में जाएं, ईद पार्टियों में जाएं, इसके 10 नाम लिख लीजिए, आप मेहंदियों में जाएं, उपटनों में जाएं। मैं कहती हूँ जान से अजीत बेटा हो, और वो कहता है कि मैंने मेला ठेला करना है, आप कहते अल्लाह की कसम आज ही तो अल्लाह जी वफा बनने का हक है, जा मैं नहीं आऊंगी। कोई कहेगा ना माँ नहीं आई, तो कहना माँ नहीं आती मेरी इधर, किसी और को माँ बना लो थोड़ी देर, क्या मुश्किल है, बड़ी माए मिल जाएंगी तुझे माओ जैसा प्यार करने लिए। ये जुरत चाहता है अल्लाह आपसे मुझसे, इसकी कीमत है, ये है इखलास, ये है टू बी फोकस्ड। हम पता नहीं किन नमाजों रोजों के नाम पर लोगों को डिग्रियां देने वाले बन गए। अब अगला टॉपिक सुनिए, इब्राहिम कौम के बुत कदे में, कौम चली गई, अब आप मेरे साथ चल रहे हैं जहनी तौर पे, कौम चली गई मेले पे, वो यात्रा थी या वो क्या था, उनको दूर कहते एक मंदिर था उनका, पहाड़ी पे जाना है, सारे कौम ने इकट्ठे हुए रंग लिया, फूल बूटे लिए, अपने बुतों को खुश करने चले गए। इब्राहिम कौम के बुत कदे में कैसे जाते हैं, कौम गई मेले में, इब्राहिम कौम के खुदाओं से मुलाकात के लिए बुतकदे में पहुंचते हैं, वहां जाकर अब जो बातें हैं ना, ये है असर में सोल सर्चिंग। वहां जाके पहले तो कौम को मुखातिब किया था ना, अब उनके बेजान बुतों को मुखातिब करेंगे। आयतें लिखिए सूरह सौफात आयत 91-93, फराग इला आलिहतिहिम फकाल अला ताकुलून मालकुम ला तंतकून फराग अलैहिम दरबन बिल्यमीन। आप इनके माबूदों तक जा पहुंचे, यानी उनके गैर मौजूदगी में उनके मंदिर में चले गए, और पूछा तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात तक नहीं करते हो। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, ये उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, ये बुतों बेचारों को क्या लग रहा था, जो पुरोहित होंगे कोई वहां कभी आएंगे देखेंगे, वो उनके तरफ असल में बातें हैं कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया, बात क्यों नहीं करते, और बात करनी किसने थी वहां, पत्थर भी कभी बोलते हैं। फिर तो बुरी कुव्वत के साथ दाएं हाथ इन्हें मारने पर पिल पड़े, फिर बुत तोड़ने शुरू कर दिए, और क्या किया नक्शा इसका, मंजर लिखे सूरत अंबिया आयत 58-60 में आता है, फजअलहुम जुजाजन इल्ला कबीर अल्लाहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फअला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم। आपने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलबत्ता सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो सब इसी की तरफ लौटे, यानी सारे बुत तोड़े, सबसे बड़ा नहीं तोड़ा बल्कि उसके कंधे पे कहते हैं कि कुल्हाड़ा रख दिया और पोने पे चले गए पीछे। कौम वापस आती है, मेला तो खत्म होना ही था कब तक, और कहते कौम की आदत थी कि वो मेला भी को मजहबी मेला ही था, जैसे हम कहते हैं ना कि 14 अगस्त का मेला भी तो एक मुल्क की मोहब्बत का मेला है ना, और ईद का मेला देखो ना, ईद मजहबी त्यौहार है तो हम ईद के मेले ना करें तो क्या होगा। तो कहते कि उस मेले से सीधा मंदिर आते होते थे, ये उनकी रस्म थी, अब कौम मेले ठेले से वापस आई और सीधा सोचा कि चलो ज़रा अपने खुदाओं को सलाम कर जाएं। जब आए तो देखा खुदा तो सारे टूटे फूटे हैं। फौरन क्या कहने लगे? वो कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हशर किसने किया? बोले, हमने एक नौजवान को इनका तذکرہ करते सुना है और उसको इब्राहिम कहते हैं। यानी खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ। उन्हें कहा, हम तो सारे गए हुए थे, ये क्या हुआ, ये किसने किया? बात बात की बोलियां। दूसरे ने कहा, वो एक नौजवान है इब्राहिम, वो हमारे खुदाओं को बड़ा बुरा कहता है, उसने ही कुछ किया होगा। बदगुमानियां आ गई और गुस्ताही का मुकदमा शाही अदालत में पहुंचता है। और फिर शाही अदालत का फैसला सुन लीजिए, यहां अमल की बातें लिखिएगा। बुजुर्गों के अदब और एहतराम में मुबालगे से काम लेने वाले लोग अंधाधुंध अकीदत में आकर हमेशा एतदाल पसंद सच के अलमबरदार लोगों को गुस्ताख कहते हैं। कभी किसी जगह अगर पढ़ें और सुने कि फलां गुस्ताख है तो एकदम यकीन ना कीजिएगा। क्यों ना यकीन कीजिएगा? इसलिए ना कीजिएगा कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो सुनी सुनाई पे बात करते हैं। आप अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सारे अमल के ऊपर अपनी निगाहें लगा कर रखें तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आ जाएगी कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहान तआला ने इतने बड़े काम के लिए चुना। पूरे मुआशरे से टक्कर लेना ये कोई छोटी बात थी, और आज ये काम बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। हम दो की जगह 10 नफल पढ़ लेते हैं रात, 5 फर्ज, 2 नफिल नमाजें, तहज्जुद और कह लीजिए कि चार्ज, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा और भी काम कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाते जो करने की ज़रूरत होती है। और वो क्या कि ना ना लोगों को ना छेड़ो, हम नहीं छेड़ते। देखिए, छेड़ना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारी बुनियादें बड़ी कच्ची हैं। हमारे अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत, तौहीद की सच्चाई इतनी याद है, हो नहीं सकता किसी शिरकिया जगह पे खड़े होकर हम मुस्कुरा रहे हो और हम किसी गलत नाफरमानी की जगह पे अपने आप को खड़ा करें और फिर के खुश। वाकई इतनी सकीम की कैफियत आती है, बंदा बीमार महसूस करता है ऐसी जगहों में जाकर, बैठकर ऐसे माहौल में उसका दम घुटता है। जैसे वो कहते हैं ना, ब्रीदिंग होती है ना, कहते हैं ना कोरोना में ब्रीदिंग हो जाती है बंदे का, सांस उखड़ता है, फिर उसको वेंटिलेटर पर डालते हैं, उसको मास्क लगाते हैं। लिखिएगा अपने लिए अमल की बात। आप अपनी तौहीद का टेस्ट कराना चाहते हैं ना, तो आपको कोरोना की तरह नाक में से रुई नहीं निकालनी पड़ेगी। आप चेक कर लीजिए, जहां कुछ शिर्क की बात होती है वहां आपका क्या हाल होता है। शिरकिया बातें, शिर्क, गुना, बेजारी, वहां अगर ब्रीदिंग हो रही है तो मुबारक हो, पॉजिटिव निकले आपका टेस्ट, तौहीद बड़ी पक्की है आपकी इंशाल्लाह, और सो ऑन। आप खुद सोचिए, मैं ज्यादा क्या बात करूं। तो लोग अमूमन ऐसी बातें कर करा के लोगों को बदनाम कर देते हैं, फलां बड़ा गुस्ताख है, हालांकि ये मुबालगा रही होती है। वो बुजुर्गों का गुस्ताख कहते कहते उस बंदे को खुद अल्लाह के गुस्ताख बन जाते हैं, लेकिन जहालत इतनी होती है कि समझ नहीं पाते। इसी किस्म के लोगों का सामना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे थे। आप पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने मुकदमा हाकिम वक्त के दरबार में पेश कर दिया। अब अगला स्टेज है, इब्राहिम पर मुकदमा कर दिया, केस कर दिया कि इसने हमारे मजहबी जज्बात को भड़काया है। और हुक्म क्या था? लिखी आयत सूरत अंबिया आयत 61, قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون। यानी इसे मजमع आम में लाइए ताकि लोग इसका अंजाम देख ले। यानी बड़ा सख्त मुकदमा हो गया इब्राहिम पे का, फौरन लेकर इसको अदालत में पेश करो, ये क्या बातें करते हो, और सारे लोगों को भी बुला लो। वही काम जो फिरौन ने किया था ना मूसा और जादूगरों के मुकाबले पे, इधर नमरूद ने भी कर लिया, का सबको लाओ जरा, आज लोग अपनी आंखों से देखे इस इब्राहिम की दुर्गत क्या बनती है। नाउजुबिल्ला, इसको जरूरत हुई हमारे बुतों को तोड़ने की? बुत तो वो कहते ही नहीं थे, खुदा थे। अब वहां जो मुकालमा आया ना, जरा ये सुनिए, दिल पे हाथ रख के। अलंबिया 62 से 67 नोट करें। कालू आ अंता फालता हाजा भी आलिहाती ना या इब्राहिम, क्या ये तूने किया है इब्राहिम हमारे खुदाओं के साथ? यानी अब मुकदमा की वो कह लीजिए ना कि एक पेशी हुई, ऐसे लग रहा है कुटहरे में इब्राहिम खड़े हैं, जज साहब है और वकील, और जज साहब कहते हैं ए इब्राहिम ये तूने काम किए, मुकदमा हो गया ना। قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم ان كانوا ينتقون, कहने के नहीं बल्कि ये इस बड़े ने किया है। ऐसे लग रहा है वो मुकदमा अदालत उसी मंदिर में ही लग गई जहां पे ये सारी तोड़फोड़ हुई थी। वो बड़े की तरफ इशारा करके कहने लगे ये उस बड़े ने किया है, और वैसे आप इन सबसे भी पूछ लीजिए अगर ये बोलते हैं। यानी इधर फिर उनके शौर को बेदार कर रहे हैं। फरजो इला अनफुसिहिम, فقالوا انکم انتم ظالمون. یہ جملہ لکھ لیں اپنے لیے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا لکھ لیں، ابراہیم کی اس بات سے ان مشرکوں کے دل میں ایک لمحے کے لیے ریزنٹمنٹ ہوئی تھی، انہوں نے اپنے دل سے غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو. یہ ہے سول سرچنگ سٹائل کا فائدہ، ضمیر جاگا، ضمیر جاگا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں پہ پلٹے، یعنی شرمندہ ہوئے اور اپنے سر نیچے کر لیے. اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم ویسے آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں. یہ کریک کیجئے مشرکوں کے دلوں میں. غلط کام کرنے والا کوئی بھی، شرک سے بڑا گناہ کیا ہوگا، اسی کے انڈر سب کچھ آتا ہے جو کرتے ہیں نا، ان کو یہ کریک آپ کر کے آگے آپ جیت گئے. یاد رکھیے شرک کی باتیں چونکہ ہو رہی ہیں، شرک بدعت سے لے کر پھر کبائر صغائر اور جو بے حیائی اور جو مناظر ہیں، میں نے اپنے یہ کرنا ہے. اس بندے کو توڑ آئیے اس گناہ سے، اس کو اس کی نظروں سے گرا آئیے، یہ تم کیا کر رہے ہو. جیسے شراب پی رہے نا کوئی، تو اس کو کہ یہ تم کیا پی رہے ہو، تمہیں سوٹ کرتا ہے یہ. بچہ آپ کا جھوٹ بولتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تم نے کی ہے. یعنی گناہ گار کو، مجرم کو، مشرک کو اس کی نظروں سے گرائیے. جو سم منو کی صلاح روسی میں نا، یہ اصل میں اپنے محاورے میں میں بول دیتی ہوں، اپنی نظروں میں گر گئے، یہ کر دیجیے آپ، باقی کام اللہ ان سے کرائے گا. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم اس کی ضمیر کو نہیں اس کی انا کو جگاتے ہیں، اور انا سویا ہوا شیر ہے، اس کو سوئے ہی رہنے دیں. کہیں گے یہ بولتے ہی نہیں. اب تھا جس کو کہتے ہیں کہ لوہا گرم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پھر اس پہ ضرب لگائی. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب ابراہیم ساری قوم کے آگے تبلیغ کرے، کیا پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں اور نہ ضرر. اف لکم، اف لفظ دیکھیے، ماں باپ کے آگے بولنے سے منع کیا گیا. اف پڑھتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں، ابراہیم وہ لفظ یوز کیا، اف لکم، اف ہے تم پہ. ولیما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ہے جی وہ خوبصورت انداز. سپریم کورٹ میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری قوم لاجواب ہو کر ہکا بکا رہ گئی، مقدمہ جیت گئی ابراہیم، ان کے باطل معبودوں کا کچھ نہ کرنا ثابت ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے. یہ ہے اصل میں جو میں سمجھتی ہوں نا، مومن کے لیے ہر مقام دعویٰ کا مقام ہے. دعویٰ نہیں جو ہم کلیم کرتے ہیں، دعوت اللہ کا. یہ ساری غلط چیزیں، شرک ہے، بدعت ہے، رسم و رواج ہے، اس کو دعویٰ کا نتیجہ بنائیے، بتائیے لوگوں کو کہ اس کے بعد تمہیں نقصان کتنا ہونا ہے. لوگ غلط کام کرتے ہیں، آپ ان کو اچھا کر کے دکھائیے. نام وہ نہ رکھیے، ورنہ لوگوں نے کہنا کیا تو پھر بھی وہی کام تھا نا. تو اب ذرا اگلا سٹیپ، سورہ عنکبوت کی آیت 16 سے 18 میں یہ واقعہ لکھے. اس قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. بلا شبہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور یہ جھوٹ موٹ گھڑتے ہو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، وہ تمہیں رزق دینے کی طاقت نہیں رکھتے. لہذا تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اس کی بندگی کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی کئی قومیں جھٹلا چکی ہیں. رسول کا کام تو صرف تبلیغ کر دینا ہے. یہ لکھے جملے، اگر اتنی ضرورت ہے نا تو پھر جائیے آپ بھی ایسی جگہوں پہ. ابراہیم بالکل ڈرے نہیں، ماحول کا حصہ نہیں بنے، بلکہ آپ کی میری لینگویج میں کہتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈال کے آگے. لوگوں نے کہنا اگلی دفعہ ان کو نہیں بلانا، ان کو کانوں کان خبر نہ، بلکہ جب یہ نہ ہو نا شہر میں پھر یہ کام کرنا. شکر کرتا ہے بندہ اندر سے، جان چھوٹی. یقین کیجئے دل بندے کا شرمندہ ہوتا ہے نا، پھر کہتا ہے اللہ کرے کوئی ایسا ہی موقع ہو جائے نا کہ یہ نہ ہی ہو بندہ ادھر، پھر ہم یہ کام کریں گے. وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، جس دن یہ بندہ کسی جگہ گیا ہم اچانک کہہ کے وہی کام اسی دن کر لیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے سے ہی کرنا تھا نا یہ کام. بعد میں کہیں گے آپ تھے ہی نہیں ادھر. اندر سے شکر کرتے ہیں. لکھیے کچھ لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے جانے کا انتظار ہوتا ہے. یہ ذہنی پاڑ ایسے ہی پڑتا ہے، پھٹتا ہے اندر سے بندہ. आप अपने खानदानों में इस रिवायत को बना के देख लीजिए। बच्चे भी जब बिगड़ जाते तो माँ बाप के घर से जाने का इंतजार कर रहे होते हैं कि जाएं तो फिर मैं दोस्त को बुलाऊं, फिर मैं फलान चीज देखूं, मैं करूं। कई शोहरों की नजर बदलती है तो वो भी कहते हैं बेगम आप जाइए ना, जरा मैं बर्तन भी धो दूंगा, तुम जाओ, जान छोड़ो, जल्दी जाओ, 2-3 घंटे लगा के आना, ये पकड़ो 1,000 करोड़, और ज्यादा ज्यादा शॉपिंग करना, क्योंकि घर में जिसको बाद में बुलाना है वो फिर टाइम चाहती है ना। ये चीज करके देख लीजिए, आपको जिंदगी पता लग जाएगी। अब यहां तक ड्रॉप सीन क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि इब्राहिम को शर्मिंदा करते हैं, इब्राहिम दावत के दलाइल की बुनियाद पर जीत गए, ये जीत हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही असर डाला था जीत गए थे, लेकिन क्या फिर फिरौन और उसके जो ऐसे दरबारी थे वो मान गए कि हाँ सॉरी मूसा माफ कीजिए, बहुत ही शर्मिंदा, आई एम सो सॉरी। बहरहाल अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, आग के फलक शिगाफ शोले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सलामती। अब यहाँ ड्रॉप सीन हो रहा है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी बहुत अभी रिसेंटली पढ़ी थी हमने सूरत अल अराफ में, तो वो एक एक मंजर याद आ रहा है कि अल्लाह सच्चे लोगों की सच्चाई कैसे साबित कराता है। चाहे वो जादूगरों को सजदों में डाला, फिरौन परेशान ये क्या हो गया, मुझसे पूछे बगैर तो मुसलमान हो गए और सजदों में जा रहे हो, ये तुम्हारी मिली भगत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इधर क्या हुआ, लिखिए सूरत अनकबूत आयत 24, फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन कालुक्तुलूहु औ हर्रिकूह। पस कौम के पास कोई जवाब तो न था मगर सिर्फ यही कहा कि इसे कत्ल कर दो या जला दो। और सूरह साफात की आयत 94 में आता है फ़ाक़बलू इलैही यज़िफ़ून। सुबहानअल्लाह। और वो आप की तरफ दौड़ते हुए भरे। और सूरह साफात की आयत 95 से 97 लीजिए, قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْهِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ। आपने कहा कि इनकी पूजा करते हो जिन्हें खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे आमाल को पैदा करने वाला है। वो पकड़ धकड़ कर रहे थे और आप तबलीग करते जा रहे थे, कौम सुनी अनसुनी करते हुए यही रट लगा रही थी कि एक इमारत बनाओ, इसमें आग जलाओ और इसको दहकती आग में डाल दो। और हैरानी की बात देखिए कि फहम फरासत से कोरे लोग क्या कह रहे हैं, सूरत अंबिया नोट कीजिए आयत 68, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين। इसको चलाकर अपने खुदाओं की मदद करो अगर कर सकते हो। मजे की बात देखिए, अल्लाह वो जो हमारी मदद करे और मुशरिक वो जो अपने खुदाओं की मदद करे, यानी अपनी जुबानों से अपने माबूदों की बेकसी का नोहा कर रहे थे। और ऐसे लोगों के बारे में एक शायर ने कहा कि समझ तो आ सकता है नुक्ता तौहीद मगर तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। जब दिमागों में बुतखाने होते हैं ना फिर बातें नहीं समझ आती, बजाय इसके कि सॉरी कहकर पलट जाते, इब्राहिम ने क्या करना था, वो तो खुश हो जाते। दाई दीन तो खुश होता, कहता है मुझे जो भी कहना है कह लो, जो मर्जी कर लो, ना चाय पानी पूछो, मेरी बेइज्जती कर दो, लेकिन मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, अच्छे काम कर लो। लेकिन इन्होंने ना किया तो क्या किया, फैसला हुआ। आप अदालत का कोर्ट का फैसला क्या था, जो हुक्मरान और अवाम के फैसले थे क्या, कहने लगे कि आग लगा दो, इब्राहिम को जला दो। एक बहुत बड़ी इमारत में आग सुलगाई गई और उसके लिए क्या कुछ किया गया, एक डिचिस खोदी गई, उसमें ईंधन डाला गया। अलविदा और निहाया सिर्फ एक किताब में आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, अगर आप हज़रत इब्राहिम की या अंबिया की स्टोरीज पढ़ें, इमाम इब्ने कसीर की पुरानी किताब है, उसमें भी कई चीज़ों में इश्काल है, अदरवाइज कहानियाँ मत सुने। कई स्पीकर ये किस्सा ऐसे सुनाते हैं, मैंने पढ़ाना था तो मैंने कहा जरा देखूं कि क्या होता है, मेरे सामने एक चीज़ आ गई, मैंने 10 मिनट भी नहीं सुनी, बंद कर दी, क्योंकि मेरे मुँह से आपके लिए ना निकल जाए। एक एक एक्शन के साथ भी बिहाज रख गई, 2 महीने उधर बैठी, 4 माह इधर बैठी, फिर ये हुआ, फिर वो रोई, फिर उसने आंसू पोंछे, फिर भाई मैं इतनी लफाजी नहीं आपके साथ कर सकती। आप देख रहे हैं मैं कुरान की आयतें दे रही हूँ आपको छोटी छोटी और उसके ऊपर एक रब जोड़ रही हूँ बस। लेकिन अगर आपको ऐसे स्टोरीज पढ़नी भी कभी हों तो कससुल अंबिया दारुस्सलाम की छपी हुई बुक है और ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनकी अक्सर, तो उसमें से पढ़ लीजिए। और अलविदा निहाया का ही मेरे हले को लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा। बस कहते हैं कि घड़े खोदे और उसमें ईंधन डाला, कितना अरसा तो ईंधन डालते रहे, लोग मन्नतें मानते थे। एक औरत उसका बच्चा नहीं है, वो कहती है बच्चा हुआ तो मैं इब्राहिम के खिलाफ जो आग जलनी है ना उसमें ईंधन डालूंगी। फिर अब नीचे जब पूरा ईंधन तनूर कहले ने एक बड़ा सा एक घड़ा खोद कर उसमें डाला, अब आग लगाई गई। अब क्या होगा कि इब्राहिम को उसमें डालें कैसे? पहला वक्त है जब मिंजनीक कहते हैं कि ईजाद हुई, जैसे गुलेल होती है ना उसमें एक पत्थर रख कर दबाते हैं तो वो दूर जाके गिरता है, आज की जुबान में तोप। दूर से इब्राहिम को एक फट्टे के ऊपर रख कर ना तो पीछे से पुश करके उस आग में फेंकेंगे, क्योंकि जो करीब जाएगा फेंकते हैं वो भी जल जाएगा, और इब्राहिम को खुद तो नहीं कहेंगे आप जाइए और जल जाइए। अल्लाह अकबर। और उन्होंने इब्राहिम को आग में डाल दिया। हर फर्द मुंतजर था कि अभी अभी हमारे बुजुर्गों का ये गुस्ताख जलकर राख हो जाएगा, और हमारे बुजुर्गों और हमारे पुतों की अजमत कायम हो जाएगी, और हमारा मजहब सच्चा साबित होगा। लेकिन लिखिए व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वफादार बंदे को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, चाहे कल वो इब्राहिम थे और आज आप अपना नाम लिख लें, शर्त यह कि आप वफादार हो। यकीन के साथ कह सकती हूँ अल्लाह कभी अपने बंदे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अपने पे लेके कह देती हूँ कि जहां जहां मैं अल्लाह के साथ सच्ची थी अल्लाह ने मेरी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बंदा कहे और रब ना करे वला मकुम भी दुआ कर रब्बी शकिया, ए मेरे रब तुझसे पुकार कर मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुई। ये ईमान लाइए, ये अपने अमल की बातें।